वाणी चल रही थी 24 जून 1968। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, आकारी सूक्ष्म वतन वालों को और साकारी स्थूल वतन वालों को कहा जाता है। ये मन बुद्धि की स्टेज की बात बताई। स्थूल वतन है 5 तत्वों की दुनिया और सूक्ष्म वतन में 5 तत्वों की बात ही नहीं है। वहां तो मन बुद्धि के सूक्ष्म संकल्प काम करते हैं। और इस शरीर में ही रह करके ये स्टेज बनाई जा सकती है। परंतु कोई कोई ऐसी कमजोर आत्माएं हैं, जो स्थूल शरीर में रह करके अंतःवाहक शरीर से कार्य नहीं कर सकेंगी। उनको शरीर छोड़ना पड़ता है और सूक्ष्म शरीर के बंधन में आना पड़ता है। वो सूक्ष्म शरीर भी कोई 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। सूक्ष्म जैसे लाइट सूक्ष्म होती है, ऐसे लाइट का आकार है जिसमें स्थूल इंद्रियां नहीं होती है, परंतु मन बुद्धि की सूक्ष्म इंद्रियां काम करती हैं। साकारी दुनिया है स्थूल वतन अर्थात 5 स्थूल तत्वों की दुनिया। जहां ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को और इस स्थूल दुनिया को इन स्थूल आंखों से देखा जा सकता है। स्थूल 5 तत्वों को भी इन आंखों से देखा जाता है, परंतु वो स्थूल तत्व भी कभी कभी इतना सूक्ष्म रूप धारण करते हैं कि इन स्थूल आंखों से तो नहीं देखे जा सकते, परंतु विज्ञान के यंत्रों से देखे जाते हैं। पर कई लोग समझते हैं कि आकार और साकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे वैज्ञानिक लोग सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, वो भूत प्रेतों को भी नहीं मानते, परंतु ऐसी शक्तियों से टाइम टू टाइम चमत्कार तो होते रहते हैं। जैसे बड़मूला ट्रायंगल, वैज्ञानिक वहां जाने से भी डरते हैं। उड़ंत स्त्रियों को देखते हैं, उनके चित्र भी निकाल लेते हैं, परंतु उनका भेद नहीं पा सकते। वो समझते हैं कि जिसका नाम रूप नहीं है, देश काल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। रावण ने उनको बिल्कुल तमोपठान बनाई दिया है। इतना तमोप्रधान बन गए हैं कि सच्चाई को जानते हुए भी गला घुट करके रहते हैं। तुम बच्चों में भी नंबर वार हैं जो अच्छी रीति समझ सकते हैं, परंतु तुम बच्चों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये युद्ध भी गाई हुई है, ये हंस बगुलों की युद्ध है, कितना युद्ध चलता रहता है। फिर उन शास्त्रकारों ने बैठ कौरव पांडवों की स्थूल लड़ाई दिखाई दी है। परंतु गीता में बाप ने क्या समझाया है, ये तुम बच्चे अभी समझते हो। क्योंकि बाप 5000 वर्ष का जो स्थूल ड्रामा है, उस टाइम पर नहीं आते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामे का जो रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग का टाइम है, उस टाइम पर आते हैं, जिसमें हर आत्मा के संकल्पों की शूटिंग चलती है। संकल्प, स्वप्न और साक्षात्कार की शूटिंग चलती है। बाकी कौरव पांडवों की कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, न कोई देवासुर संग्राम हुआ, और न ऐसा कोई राम रावण स्थूल युद्ध हुआ है। स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है। June 24, 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के राजयोग सिखाते हैं। जिस राजयोग से तुम्हारे 63 जन्मों की रील घूमती है, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। उन पाप कर्मों की रील तो सामने आवेगी ना। पुण्य कर्मों की रील घूमती है तो बच्चे खुश रहते हैं, पाप कर्मों की रील घूमती है तो बहुत पुरुषार्थ करने पर भी पुरुषार्थ डाउन हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं अभी मैं राजयोग सिखाने आया हूँ, इस राजयोग में राज भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को भस्म करने का। तो समझ सकते हैं कि बाप टीचर बन करके पढ़ावेंगे या लड़ाई सिखावेंगे। ये पांडव गवर्नमेंट तो बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट है, इस पांडव गवर्नमेंट के विजय तो गाई हुई है और विजय तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप वरदान देते हैं विजयी भव, पौरव गवर्नमेंट का तो विनाश ही हुआ है। परंतु रावण संप्रदाय का संघ बड़ा कड़ा है, घड़ी घड़ी बच्चे संघ के रंग में आ जाते हैं। वास्तव में तुम बच्चे हो राम संप्रदाय के, वो है बगुलों का संप्रदाय और तुम्हारा है हंसों का संप्रदाय, क्योंकि तुम ज्ञान रत्नों के मोती चूमते हो, वो फिर भी गंध खाती रहती है। एक ही घर परिवार में मित्र संबंधियों आदि का कितना हंगामा हो जाता है। एक तरफ आसुरी संप्रदाय ढेर के ढेर और दूसरी तरफ तुम ब्राह्मण संप्रदाय कितने थोड़े हो। परंतु तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय मत से तुम कितने पावरफुल बन जाते हो। अंत समय आवेगा तो तुम विजयी बनेंगे। विश्व पर राज्य करेंगे और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं आत्मलोक में वापस चली जाएंगी। फिर बाद में नंबरवार लौट करके आती रहेंगी। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है, गायन भी है, राम गयो रावण गयो, ये तमो प्रधान आत्माएं तो साथ चली जावेंगी। रावण संप्रदाय के तो इस दुनिया में ढेर के ढेर हैं। और राम संप्रदाय के तो कितने थोड़े हैं, फिर भी तुम्हारी प्रजा बनती रहती है। थोड़ा बहुत भी सुनते हैं तो बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। नई दुनिया में तो जावेंगी ना, बल ऊंच पद नहीं पाते हैं, परंतु संदेश को स्वीकार तो करते हैं, तो ये भी प्रजा बन गई। राजयोग की मेहनत करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ऊंच पद भी मिल सकता है। तो अभी तुम बच्चों को यही एडवर्टाइजमेंट करनी है, कि बाप ने कोई स्थूल युद्ध नहीं सिखाया है। कौरव पांडवों का, देवताओं असुरों का या राम रावण संप्रदाय का कोई स्थूल युद्ध नहीं हुआ। तो स्थूल लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, तो 63 जन्म कितनी लड़ाई झगड़ा मारामारी करते रहे। कोई भी महान पुरुष दुनिया का लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। परंतु देखो शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। आज की दुनिया में जैसे नॉवेल्स बनाते हैं ना, ऐसे लिखा है। उन नॉवेल्स में तो बहुत छी अक्षर होते हैं, बाकी शास्त्रों में कोई छी अक्षर नहीं होते। नॉवेल्स में तो वही लव की बातें होती हैं, और इस झूठ की दुनिया में लव कहां से आया? झूठ खंड में सात झूठे हैं, धोखेबाज हैं। प्यार का सागर तो एक ही बाप है। जिनको ये नॉवेल्स पढ़ने की आदत पड़ जाती है, वो फिर छोड़ते ही नहीं है। कई अच्छी अच्छी बच्चियां भी नॉवेल्स पढ़ लेती हैं। नॉवेल्स पढ़ती हैं और उनके आधार पर लिखी हुई फिल्में भी देखती हैं। इस तामसी दुनिया के नॉवेल्स और फिल्मों के देखने से आत्मा का बहुत भारी पतन हो जाता है। वोई वोई बातें बुद्धि में चलती रहती हैं। बाप कहते हैं मुझे एक को याद करो, ऊंचते ऊंच को याद करोगे तो ऊंचते ऊंच बनोगे। ऊंचते ऊंच बाप जो ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसको याद करोगे तो ऊंचते ऊंच बनोगे। फिर भी बाप की बातें सुनते हुए भी बाप के घर से नॉवेल्स छुपा करके ले आती है। बाबा को तो इन बातों का पता पड़ जाता है। क्योंकि मधुबन है शीशे का महल, उसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल में इतने शीशे लगे हुए हैं ज्ञान के दर्पण, कि भगवान की हजार आंखें देखती रहती है। अपना भी पोता में लिखते हैं तो दूसरों का भी लिख देते हैं। बल छिपाए छिपाए कर पढ़ते रहे। अब बाप ने तो बताया है, तुमको तो अपने ससुर घर जाना है, जहां ये शीशी बातें होती ही नहीं। तुमको दो बाप मिले हैं संगारने के लिए, कौन कौन से दो बाप? पारलौकिक बाप और लौकिक बाप। लौकिक बाप संगारते हैं कि शादी कराए देते हैं? इसलिए पहले ही बता दिया कि लौकिक माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। सरेंडर भी कर देते हैं तो मोह के कारण याद करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। अब ये दोनों बाप तो आए हैं संगारने के लिए। कौन से दोनों बाप? और दोनों बेहद के बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है सारी मनुष्य शक्ति का बाप। तो जिम्मेवारी आ जाती है। ये बेहद का पियर घर है, उस पियर घर रावण के राज्य में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। अभी तो हम जाते हैं ससुर घर, यहाँ तुमको जेवर आदि कुछ भी नहीं पहनने, क्योंकि तुम यहाँ वनवास में बैठे हो। सब कुछ तुमको बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया है, हम इस दुखधाम को छोड़ करके सुखधाम में जाने वाले हैं। तो फिर इस दुखधाम को क्यों याद करें? और वाया शांति धाम जावेंगे, डायरेक्ट तो कोई भी दुखधाम से सुखधाम में नहीं जा सकता। तो बच्चों को शांति धाम भी याद करना है, जानते हो अभी घर जाना है। घर को भी याद करो और मुझे अपने बाप को भी याद करो। बाप वहां भी है तो यहां भी है। परंतु तुम्हारा घर तो वहां है ना, बाप का घर सो तुम्हारा घर। अपन को आत्मा समझेंगे तो अपना घर भी याद आवेगा। अभी तो घर जाना है ना, नंबर वार घर जावेंगे, फिर नंबर वार नई दुनिया में आवेंगे। अभी तो बच्चों की कितनी दूर की मुसाफरी है, दूर देश का रहने वाला आया है दूर देश में ले जाने के लिए। इन सभी आत्माओं का झुंड जावेगा। जैसे मक्खियों का मनारा जाता है, सबसे तीखा झुंड होता है मधुमक्खियों का, उनमें बहुत आपस में एकता होती है। एकता उनमें होगी जिनमें मिठास होगा, और मिठास भी उनमें होगा जिनमें प्योरिटी होगी। बहुत आपस में एकता होती है। इन मधुमक्खियों की हेड रानी होती है, भारत में पहले रानी का नाम लिया जाता है, सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। इसलिए भारत को मदर कंट्री कहा जाता है। कोई विदेशों को मदर कंट्री नहीं कहते हैं। तुम ही ऐसी रानियां बनती हो जो भारत में स्वर्ग के गेट खोलती हो, राजभाग लेती हो, तुम स्वर्ग का गेट खोलने वाली हो। तुम्हारा नाम है भारत माता, इसलिए भारत में भक्ति मार्ग में नदियों में स्नान करने जाते हैं। समझते हैं भारत की नदियां पतित पावनी है, क्या विदेशों में नदियां नहीं है? विदेशों में तो कोई भी स्नान करने नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? कहां की यादगार है? उस संगम युग में जब बाप आए थे तो विदेशी नदियों ने वो पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं किया, भारत माताओं ने पवित्र रहने का पुरुषार्थ किया। तुम्हारा नाम गाया जाता है शिव शक्ति अवतार, तुम ही नंबर वार राजभाग लेती हो, और तुम माताओं ने ही पुकारा है कि बाबा हमको पति लोग तंग करते हैं, जबरियन नगन करते हैं, टच करते हैं, बाप कहते हैं, ये भी माया है। जैसे मकड़ी अपने आप अपना जाला पूरती है, फिर उस मकड़ी को अपना जाला अपने आप ही हप करना पड़ता है। त्रेसठ जन्मों में ये माया का जाल तुमने खुद ही बनाया है। जो अभी रिहर्सल शूटिंग के पीरियड में तुम्हें तंग करता रहता है, तुम जानते हो कि आत्मा एक जन्म में स्त्री और एक जन्म में पुरुष बनती है। तुमने भी पुरुष चोले लिए हैं, स्त्री चोले भी लिए हैं। तो अभी समझ सकते हो कि ये हिसाब किताब पूरा होता रहता है। बाप जानते हैं कि शरीर को टच करने वाले तो बहुत है ना। बच्चियां कहती हैं हमको ये अच्छा नहीं लगता, अब अच्छा नहीं लगता इससे साबित होता है कि तुम बाप की याद में अपने को उड़ा नहीं सकती हो, नहीं तो ऐसे हालातों में तुरंत मुर्दा बन जाना चाहिए, बाप की याद में ऊपर उड़ जाना चाहिए, नहीं तो बाप कहेंगे ये देह अभिमानी की बात है। तुम्हारी देह को देखते हैं तभी तो टच करते हैं। आत्मा को अगर देखें तो आत्मा को टच कर सकते हैं क्या? तो आजकल बाप समझाते हैं कि तुम बच्चियों को ये सहन करना है। क्यों बच्चियों को ही क्यों सहन करना है, पुरुषों को क्यों नहीं सहन करना पड़ता? क्योंकि पुरुष प्रबल होता है, स्त्री कोमल होती है, पुरुष साथ दुर्योधन दुशासन होते हैं। ये तो बताया कि आत्मा एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष का लेती है, तो हिसाब किताब तो पूरे करने पड़ेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो टच करने से भी तुमको कोई देह अभिमान नहीं आवेगा, तुम्हारा कोई पाप नहीं बनेगा। पाप की बात है नंगन होना, बाकी टच आदि करना ये तो कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है द्रौपदी ने पुकारा, धर्म को नग्न करते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बल बाप प्यार का सागर है, परंतु फिर भी समझाते हैं कि मेरे साथ धर्मराज भी है। वो मेरा राइट हैंड है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। यहाँ तो इसे अन्याय की दुनिया में न्याय नहीं मिलेगा, परंतु धर्मराज के कोर्ट में कोई बच नहीं सकता। बच्चों की एक एक चलन को बाप बताते हैं कि धर्मराज नोट करते जाते हैं। ड्रामा में ये पार्ट है, सजा देने वाला भी वो ही है। ये सभी बातें ड्रामा में नूद हैं। ऐसे भी नहीं है जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं कि धर्मराज के पास चित्रग्रीव रहता है, वो चौपड़ी में सब नोट करके रखता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई किताब है जिसमें बैठ लिखते हैं, नहीं, ड्रामा में ये सब नूद है। तुम्हारी करतूत की भी नूद है, तो सजा खाने और सजा देने वाले की भी नूद है। तो बाप इन बच्चों को समझते हैं और समझाते भी हैं। बाप बैठे ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं और वो समझाने भी ड्रामा अनुसार है। अंत में तो ये टचिंग आदि कुछ भी नहीं होगी। कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसी तुम्हारी देही अभिमानी अवस्था बन जाएगी। जैसे तुम सतयुग में पवित्र संबंध में रहते हो, वैसे यहां तुम पवित्र बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में जन्म लेने के बाद वहां नए युग में ही तुम पवित्र बनेंगे, नहीं, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव इसी दुनिया में करना है। आत्मा इस दुनिया में जब आई थी पवित्र धाम से, तो पवित्र आई थी या अपवित्र आई थी? पवित्र आत्मा आई थी, तो पवित्र बन करके ही वापस जाना पड़ेगा। अभी जो अपने पुरुषार्थ से पवित्र बनते हैं, वो पवित्रता के संस्कार फिर सतयुग में आवेंगे, फिर अंत समय में जैसी जैसी जिसकी अवस्था होगी वैसी वैसी बुद्धि बन जाएगी। हरेक की अवस्था के आधार पर पद मिलता है। ये भी तुम जानते हो, ये वैरायटी जा रहे हैं, इसमें हरेक पत्ते की हरेक एक्ट्रेस की चलन अपनी अपनी है। एक के संस्कार एक की चलन न मिले दूसरे से। ये दुनिया एक बेहद का नाटक है। उस ड्रामा को समझने और समझाने की विशाल बुद्धि चाहिए। कितनी छोटी सी आत्मा है और इस छोटी सी आत्मा को ये देह अभिमान का दुम्ब कितना बड़ा मिलता है। इतना बड़ा शरीर मिलता है पार्ट बजाने के लिए। तो ये अविनाशी पार्ट है। हरेक आत्मा का पार्ट के अनुसार अगले जन्म में फीचर्स तैयार हो जाता है। अपने अपने तरीके का शरीर मिलता है। ऐसे हरेक जन्म में जन्म लेते रहेंगे। तो हर जन्म में फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये बना बनाया बेहद का ड्रामा है। ऐसे नहीं कि कोई ने बैठ बनाया है। हाँ, अभी कह सकते हैं कि संगम युग में हर आत्मा अपना अपना पार्ट अपने लिए नूद करती है। ऐसे नहीं कि भगवान डायरेक्टर बन करके एक एक को पार्ट बांधता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कोई इन बातों का अच्छी तरह ख्याल करेगा तो बहुत मजा आएगा। ये कोई साधारण पढ़ाई थोड़े ही है, बहुत बड़ी पढ़ाई है। और सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जैसे उस दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है और बाप के वर्षे का मालिक बन जाता है, वैसे यहां भी जो 100% अटल निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो मालिक बनते जाते हैं। फिर उनकी चलन के आधार पर हिसाब किताब बनता है। अगर चलन अच्छी नहीं होगी तो भी बाप कहेगा ये तो लायक ही नहीं है। अच्छा ओम शांति।